राम राम हरे 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 कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवंत, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत चौथे स्कंद के सातवें अध्याय में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु दक्ष के यज्ञ में पूर्णावती के समय भगवान शंभु के अपराध की क्षमा याचना मांगने के ऊपर प्रकट जो भगवान हुआ तो सभी साहस उठ के खड़े हुए, ब्रह्मा शंकर दक्ष आदि सब, और हरेक ने अपनी अनुभव बुद्धि के अनुसार भगवान की प्रार्थना की। तो हमको एक बात यहां सीखने को यह मिलती है कि सबको भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, और ये प्रसंग ही हमने लिया है, वंदना भक्ति का एक अंग है। आई हरे कृष्ण, वंदना नवदा भक्ति का एक अंग है जिसमें भगवान की प्रार्थना की जाती है। तो हम सबको भगवान की प्रार्थना हमारी अपनी बुद्धि के अनुसार करनी चाहिए। तो प्रार्थना करना हमारा एक भक्ति का अंग है, तो इन प्रार्थनाओं से हमको सीखना चाहिए कैसी हम प्रार्थना कर सकते हैं। जैसी हमारी अनुभूति है, जैसी हमारी मति है, वैसे प्रार्थनाओं के अंतर्गत भी भक्ति रसामृत सिंधु में एक प्रार्थना को संप्रार्थनात्मक कहा गया है, एक को दैन्य बोधि का कहा गया है, एक को लालसामयी कहा गया है, एक में अपने दोषों का, अपने अपराधों का, अपनी असमर्था का भगवान के सामने दीन भाव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम आपके कृपा के पात्र हैं, हमारा अपना कोई योग्यता नहीं है। और जो भाव भक्ति में है वो लालसामयी प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी सेवा कब मिलेगी हमको, कब हम आपको चमर झुलावेंगे, कब हम आपके लिए फूलों की माला बना के अर्पण करेंगे। और एक सामान्य प्रार्थना है जिसको सबको करनी चाहिए, तो ये प्रार्थना है हमको इन महानुभावों की प्रार्थनाओं से हमारे को अपने जीवन में कुछ प्रार्थनाएं भगवान को करने का नियम बनाना चाहिए। तो कल हमने दक्ष जी की प्रार्थना का वर्णन सुना था, और दक्ष की प्रार्थना के बाद ऋतविजय का मतलब जो यज्ञ के अंदर पुरोहित थे उन्होंने प्रार्थना की। आज हम सदस्यों की प्रार्थना का वर्णन कर रहे हैं जो उस यज्ञ में सदस्य थे। वो सदस्य भी जानते हैं कि हमसे अपराध हो गया है और अब हमको इस संसार से विरक्त होकर भगवान के चरणों का शरण लेना चाहिए। तो संसार में जो संकट है उनका वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं उत्पत्या अध्वनि अशरण और कलेश दुर्गे अंत उग्रह व्याला नविष्टे विश्य मृगतृष्य आत्मा गे और भार द्वंद स्वभरे खल मृग भय शोक दाविघ्न अज्ञ सार्थ पादौ कस्ते शरणाद कदायाति काम उपसृष्ट। इसमें भगवान का संबोधन है जिसके जो हे प्रभु आप के चरणों का शरण सबको लेना चाहिए, ये है इसका मुख्य भाव। हे जीवों को शरण देने वाले प्रभु, ये सदस्यों की प्रार्थना का भाव है कि जीवों को केवल एकमात्र आप शरण दे सकते हैं। तो जीवों को कष्ट क्या है और कहां कष्ट है, जीवों को कष्टों का वर्णन करते हैं जो अनेक प्रकार के कलेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूपी भयंकर सर्प घात लगाए बैठा है, और जिसमें द्वंद रूपी अनेक गड्ढे हैं एवं दुष्ट रूपी जंगली जीवों का भय बना रहता है तथा जिसमें शोक रूपी दावाग्नि जल रही है, ये है संसार के दुख। संसार कैसा है? ऐसे विषी मरुस्थल, ऐसा स्थल जिसमें कहीं विश्राम नहीं है। संसार में कहीं कोई विश्राम ले वो है नहीं, से रहित संसार मार्ग में। पहला जो शब्द है उत्पत्ति का मतलब संसार, और दूसरा शब्द जो है उसका अर्थ है रास्ता, संसार के मार्ग में, और तीसरे शब्द का अर्थ है जहां कोई विश्राम नहीं है, कहां कोई शरण नहीं है। और भगवान को कहा है शरणद, हे शरण लोक जो, हे शरण जीवों को शरण देने वाले भगवान, ये संसार के मार्ग में कहीं विश्राम नहीं है। तो क्या है? बहुत संकट है। फिर भी अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूपी मृग तृष्णा के जल के लिए देह गेह का भारी बोझ अपने सर पर लिए हुए जा रहे हैं, वे आपके चरणों का शरणों में कब आएंगे? तो ये सामान्य रूप से जो संसारी लोग हैं उनकी उनका वर्णन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये श्रीधर स्वामीपाद लिखते हैं, सदस्यों ने रुद्र से रहित भी दक्ष यज्ञ में धन के लोभ से होने वाली अपनी प्रवृत्ति को सोचकर संतप्त होते हुए वृत्ति की प्राप्ति की कामना से श्री भगवान की स्तुति करते हैं। तो ऐसी स्तुति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ऐसे यज्ञ में गए थे जिसमें शंकर जी को बुलाया ही नहीं गया था, ब्रह्मा जी आए नहीं थे, तो इनको भी नहीं जाना चाहिए था। ये समझते हैं हम गए काय के लिए कि हमारे को कुछ धन मिलेगा, तो उन्होंने कहा धन मिलेगा तो क्या करेंगे, तो भोग के लिए गए थे, तो भोग संसार में फंसा देगा, तो वृत्ति के लिए प्रार्थना कर रहे। वो कहते हैं हरे कृष्ण, कट गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा हाँ, मैं देखा था वो चला गया था नेट, हो सकता है यहाँ भी कुंभ मेले की और कुछ आने वाले हैं वाले हैं मंत्रिमंडल सो। सो बात ये कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि हम वरिष्ठ वैष्णव के अनुपस्थिति में काय के लिए लालच करके यज्ञ में गए थे, हमको भी व्रत होना चाहिए। तो वे कहते हैं कि अभय प्रदान करने वाले प्रभु भगवान कैसे हैं जो सबको अभय दान देते हैं, भय से मुक्त करते हैं। कैसे कर कब करते हैं? जब कोई शरण लेता है। तो ये जीवों के शरणे अभय प्रदान दान करने वाले प्रभु संसार मार्ग में विद्यमान अज्ञानी जीवों का समूह आपके चरणों की शरण में कब आएगा? संसार में अनेक जीव अपने कर्मों में लगे हुए हैं, फल भोगना चाहते हैं, आपके शरण में कब आएंगे? क्यों आपके शरण में? क्या भगवान के मेरे शरण में आके क्या करेंगे? क्या तकलीफ है उनको? क्या समस्या क्या है? ये संसार मार्ग कैसा है? ये ऐसा है कि इसमें विश्राम स्थल है ही नहीं। कोई कहे कि यहां अब हमको सब चिंताओं से मुक्त हो गए, एक जगह बैठ के भगवान का भजन करें, ऐसे संसारी लोगों के लिए स्थान है ही नहीं। इसमें अनेक दुर्गम स्थान है। दुर्गम, दुर्ग कहते हैं किले को, वैसे ही संसार सारे को किला कहा गया है। ये माया का जाल है जिसके अंदर दुर्गा देवी सबको बंद करके त्रिशूल से त्रिताप दे रही है। इसमें काल रूपी भयंकर सर्प बैठा है, ये समय को काल कहा गया है, और विषय रूपी मृग तृष्णा का जल है, इसमें विषयों का भोग ऐसा है जैसे मृग तृष्णा का जल, जल है नहीं लेकिन जल दिखता है, जिसमें आत्म अभिमान होता है, मैं हूं मेरा है ये अभिमान होता है, और उसके कारण क्या होता है, ऐसे देह और ग्रह का भार, भयंकर भार है, मैं घर मेरा दुकान मेरा मकान, ये सारा भार उठा के घूम रहे। इस मार्ग के सुख दुख इत्यादि द्वंद ही गड्ढे हैं, इस मार्ग में गड्ढे कौन से हैं जिसमें अटक जाता है, या सुख में अटक जाता है या दुख में लटक जाता है। तथा दुष्ट रूपी व्याघ्र आदि जंगली जीवों का भय बना रहता है। संसार में जंगली जीव कौन से हैं, काम क्रोध मोह लोभ मोह मद मत्सर, ये जंगली जीव है, ये संसार के जंगल में सबके पीछे पड़े हुए हैं। इस मारक की शोक ही दावाग्नि है, दावाग्नि का मतलब वन में आग लगती है जिसको कोई लगाता नहीं है, वो शोक है, शोक का मतलब जो चीजें संसार से चली जाती हैं उसका शोक होता है। तथा इस मार्ग में चलने वाला जीव अनेक प्रकार की कामनाओं से पीड़ित होता है, ये श्रीधर स्वामी का तात्पर्य इस श्लोक के ऊपर है। फिर कट गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। फिर वापस आया, आज थोड़ा सा समस्या है, पता नहीं नेट का क्या है मालूम नहीं। तो सदस्यों के प्रार्थना के विषय में शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, श्री प्रभुपाद जी के भावों में भी ये सब शब्दों का भाव है। तो सदस्य कहते हैं, संसार के मार्ग में जहां विश्राम नहीं है, जहां सुख दुख के खड्डों में लड़खड़ाते हुए भयभीत जंगली जानवरों से घिरे हुए वन की आग में फंसे हुए शोक ग्रस्त और समय रूपी काल के भय से भयभीत पांच प्रकार के भय, ये पांच प्रकार है अपना कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह, ये मूर्ख अज्ञानी लोग कामनाओं से देह गेह का शरीर और घर परिवार दुकान मकान का भार उठाए हुए मृग तृष्णा की जल की प्यास में पागल भाग रहे हैं, कब आपके चरणों का शरण लेंगे। तो संसार का मार्ग कैसा है जिसमें कहीं विश्राम नहीं है, इसमें खड्डे क्या हैं, दुख और सुख, और यहां भयानक बाघ आदि, इसके उदाहरण एक बहुत अच्छा उदाहरण एक कथा में बताया हुआ है, पर उस कथा बताने से पहले ये बताते हैं कि ये आपके चरणों का शरण कब लेंगे। उस समय सदस्य कहां दृष्टि डाल रहे हैं, दक्ष और उसके प्रहतों की ओर देख रहे हैं कि ये दक्ष और इसके प्रोहित कब आपका शरण लेंगे। अभी भी यज्ञ कर रहे हैं, अभी भी भोग की भावना बनी हुई है, ये कब आपका शरण लेंगे। दोनों की ओर देखा, दक्ष और प्रोहितियों की ओर देखा, ये उनके ऊपर इनका जो है श्लोक का भाव है और अपनी त्रुटि की बात करें, और ऐसे कह के वो बोल रहे हैं हे शरणा, हे शरण देने वाले भगवान, हे शरणीय भगवान, अगर ये आपका शरण नहीं लेंगे तो आप क्या करेंगे? ये तो प्यासे हैं, एक तृष्णा से भरे हुए हैं भौतिक भोगों के लिए, मृग तृषि, ये शरीर को ही मैं मानते हैं और घर परिवार में ही इनका बुद्धि लगी हुई है, बस ये काम इनके बंधन का कारण है, ये कैसे आपका शरण लेंगे? श्री प्रभुपाद ने थोड़े से तात्पर्य में बहुत उत्तम संदेश दिया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है उसको समझना चाहिए कि ये जीवन कितना भयानक दुखदायक संसार में संकटमय है, जिसका वर्णन इस श्लोक में हुआ है। प्रभुपाद जी उनका वर्णन करके भयभीत न कराते हुए कह रहे हैं इन सारे दुखों का कारण, सारे संकटों का जो मूल है वो भगवान श्री कृष्ण को भूलना है। कृष्ण भूलिया जीव बाहर भोग वांछा करे, निकट माया झपटिया धरे, माया दे संसार दुख, कृष्ण भूलिया जीव बाहर मुख, ताते माया दे संसार दुख। तो प्रभुपाद जी सीधा ये बात कह के फिर कहते हैं ये कृष्ण भावना जो आंदोलन हमने शुरू किया है ना, ये लोगों को ऐसे जो संकट है, शोक है, भ्रम है, भय है, उससे मुक्त होने के लिए इसकी स्थापना की है। इसलिए ये मानव समाज में सबसे बड़ा लोगों को दुख से बचाने का एक सहयोग और सहायता है, रिलीफ वर्क है मानव समाज के लिए। और जो ये कार्य कर रहे हैं भक्त, वही सबसे बड़ा सौहृद है, सभी सबके शुभ चिंतक है, सबसे बड़ा समाजी कार्य कर रहे हैं। रोटी देने वाला भी समाजी कार्य कर रहा है, कपड़े देने वाला भी समाजी कार्य कर रहा है, इलाज कराता है वो भी समाजी कार्य करता है, परंतु कृष्ण भावना के भक्त जो जीव को भगवान के शरणों का, कृष्ण के शरण में जाने का मार्ग बता रहे हैं, भूले हुए भटके हुए जीवों को दुख से मुक्त कराने के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप के सबको कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो सबसे बड़े परोपकारी हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ये परोपकार इन भक्तों को मिला कहाँ से? ये चलते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों में, वो कैसे हैं? महावदन्या है, अति उदार है, सबके हितैषी है, शुभ चिंतक है, जीव मात्र के शुभ चिंतक है। तो इस श्लोक से श्री प्रभुपाद हमको जो भक्त हैं उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारे को इस संसार में भटके हुए लोगों को चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद रूपी कृपा के हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा भगवत भावना की तरफ लाना चाहिए। जो कथा हम आपको याद कराना चाह रहे थे वो कथा ऐसी है कि एक व्यक्ति सारे, हम तो ये कथा बताते हैं प्रायः विदुर जी ने मानो के धृतराष्ट्र को बताई, धृतराष्ट्र संसार मोह में फंसा हुआ था, पुत्रों के मर जाने के बाद भी महाराज युधिष्ठिर के वहां बड़े सुख से रह रहा था। तो विदुर जब उनको बताने आया तो विदुर बहुत तीर्थों में यात्रा करके आया, उनको कह रहा था काय के लिए अभी तक आप भीम के दिए हुए टुकड़ों के ऊपर पल रहे हो जिन्होंने आपके पुत्रों की हत्या की है, कुत्ते की तरह क्यों रह रहे हो? तो उन्होंने कह दिया कि अच्छा बात को बदलने के कि आप कहां कहां से घूम के आए बताओ तो विदुर। तो विदुर उनको और वृत्ति की तरफ लाने के लिए कहने लगे कि मैं एक जंगल से जा रहा था, मैंने एक व्यक्ति को देखा, बड़ा भयभीत वो कर भाग रहा था। उसके पीछे 5 हिंसक पशु खूनखार जो उनको चीर काट के मार के खाने वाले थे भाग रहे थे, उनसे बचता हुआ एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर चढ़ते चढ़ने लगा, तब तक तो एक डायन ने आके उसको झपटना चाहा, उससे बच के ऊपर चढ़ा, एक डाली पे लटक गया। अब नीचे पशु तो उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन डाली पे बैठा हुआ नीचे देखता है तो कुआं है, कुएं में एक अजगर मुंह खोल के बैठा हुआ है। और वो पेड़ की मूल की ओर देखा, जड़ की ओर देखा, तो चूहे हैं काले और गोरे, जड़ को काट रहे हैं। देख रहा है जड़ कटेगी, मैं गिरूंगा कुएं में, ये अजगर मेरे को खा जाएगा, ये सब देख रहा है। तब तक अचानक ऊपर नजर गई, एक डाली के ऊपर शहद का छत्ता था, मधु का छत्ता था, उससे मीठी मधु नीचे गिर रही थी और वो उसको चाटने में लग गया। तो धृतराष्ट्र ने मानो कहा कि ऐसा मूर्ख कौन हो सकता है, चारों ओर मौत से घिरा हुआ है, 5 पशु पीछे, डायन झपट रही है, सांप नीचे प्रतीक्षा कर रहा है, चूहे जड़ काट रहे हैं, फिर भी मधु खा रहा है, ऐसा मूर्ख कौन है? बोला महाराज आप, ये सब संसारी ऐसे मूर्ख हैं, काम क्रोध लोभ मोह के पशु सबके पीछे लगे हुए हैं, हिंसक ये हमको तो दबोचना चाहते हैं। बुढ़ापे रूपी डायन सबके ऊपर आक्रमण करके आज नहीं तो कल आके बैठेगी, नीचे काल रूपी सांप मुंह खोल के बैठा है और दिन और रात काले और सफेद चूहे जड़ काट रहे हैं, फिर भी कोई भोग में बैठकर छाते का मधु खाए तो मूर्ख है ना, संसार में कैसे रह सकता है? अभी तक वृत्ति नहीं आई तो सदस्यों का भाव है कब हम आपका शरण लेंगे। अब हम रुद्र जी की प्रार्थना को आज पढ़ेंगे, आज क्या दूसरी क्लास भी आज है, तो रुद्र उवाच। अब शंकर जी प्रार्थना कर रहे हैं, तव वरदवराहंग राव आशीषे अखिल अर्थे हय अपि मुनिभिर अशक्तिर आद्रेणाहरणीय यदि रचिता धियं वा विद्या लोक अपविधम् जपते न गणये तत त्वत परानुग्रहेण। शंकर जी भगवान को कहते हैं तव वरद, आप सबको वरदान देने वाले हैं, आपके चरण कैसे हैं? वर अंग्रहो, आपके चरण कमल अति उत्तम है, वर का मतलब सबसे श्रेष्ठ, आशीष का मतलब भौतिक इच्छाओं वाले आपके पास वर मांगने आते हैं, आपका नाम ही आशुतोष है, और अखिल अर्थ है कुछ कोई भी मांगे तो शंकर जी कहते हैं आप ही असल में वरदाता हैं, सबकी इच्छाओं को पूरे करने वाले हैं। केवल ऐसा नहीं है कि सकाम भक्तों की आप इच्छाएं पूरी करते हैं, मुनि भी आसक्ति, जो ऋषि मुनि हैं जिनको संसार में कोई आसक्ति नहीं है, जो मुक्त हैं, आदरेण आहरणीय है, वो बड़े आदर से आपकी पूजा करते हैं, आप सबके लिए पूजनीय है। यदि रचित धियाम ना विद्या लोको अपविद्धम, और मैं भी आपके चरणों कमरों में हमेशा अपनी बुद्धि को लगाए रखता हूं, ये जो मां अविद्या जिनके बुद्धि नहीं है, मां का मतलब नहीं विद्या का मतलब, जिनके पास विद्या नहीं है, ये कम अकल वाले लोक अपविद्धम मेरा अपमान करते हैं, कहते हैं भूत भूतों के साथ रहता है, शमशान में रहता है, जब वैसे ऐसे प्रजलप करते हैं बोलते हैं न गिरन गणने, मैं उनकी कोई परवाह नहीं करता हूं, मैं उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देता हूं, क्यों? यत्त्वत् परो अनुग्रहेण, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, यह आपकी कृपा है भक्तों के ऊपर। हरे कृष्णा, आया वापस आ गया। हाँ जी, हाँ जी, आया 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 के आ गया। चलो देखते हैं क्या आगे क्या है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, रुद्र जी की प्रार्थना का भाव हम पढ़ रहे हैं श्रीधर स्वामी के शब्दों में। हे वरद प्रभु, हे वर देने वाले प्रभु, हे वरद, वरदराज भगवान विष्णु को ही वरदराज कहते हैं, जो सबको वरदान देते हैं, हर मांगने वाले की इच्छा पूरी करते हैं, जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं गॉड इज फुलफिलिंग द डिजायर ऑफ एवरी वन सिंस टाइम इमेमोरियल। फिर निक कट गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आज कुछ समस्या है। आज हरे कृष्णा, आपकी समस्या से तो निपट जाएंगे, परंतु दूसरों का क्या होगा। हरे कृष्णा प्रभु। हेलो, हरि बोल। मेरा आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा बोलिए, आप मेरे को सुन रहे हैं? हरि बोल। ओके, श्री रुद्र, हे वरद प्रभु, भगवान वरदान देने वाले। नहीं सुनाई दे रहा है? आवाज तो है। हे वरद प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार के सकाम पुरुषों के संपूर्ण। हाँ, नहीं आवाज नहीं आ रही।
अभी तो ठीक आई इस बार, लेकिन अदरवाइज आपकी आवाज जो पहले
आज कुछ समस्या है, नेट में लगता है। हे वरद प्रभु, आपके उत्तम चरण संसार से सकाम पुरुषों के संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं। शंकर जी कह रहे हैं, सभी वस्तुओं से अनासक्त रहने वाले मुनिजन भी आपके इन चरणों की आराधना करते हैं। आपके इन्हीं चरणों में बुद्धि के लगे रहने के कारण अज्ञानी लोग यदि मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं, आपके इन्हीं चरणों में बुद्धि के लगे रहने के कारण अज्ञानी लोग यदि मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं, तो आपकी कृपा के कारण मैं उसकी परवाह नहीं करता। तो शंकर जी का भाव है कि भगवान आप ही पूजने हैं, आप ही सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, साधु संत भी आपका शरण लेते हैं, संसारी लोग भी कामनाओं के लिए आपके पास आते हैं, मैं भी आप में पूर्ण रूप से बुद्धि लगा के बैठा हूं, इसलिए मेरा कोई अपमान करता है, अनादर करता है, तो उसकी मैं परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि ये आपका अनुग्रह है। तो शंकर जी ने कहा कि पहले तो निंदा मुझको दुख ही निंदा, शंकर जी कहते पहले कोई मेरी निंदा करता था तो मुझे दुख होता था, परंतु अब उसकी मैं परवाह नहीं करता। कामना से रहित होकर आप में विनिष्ठ बुद्धि वाले मुझको यदि संसार के लोग विद्याहीन और आचार भ्रष्ट कहते हैं, कहने दीजिए, तो संसार की इस निंदा का मैं परवाह नहीं करता। शंकर जी कहते इससे हमको सीखना चाहिए कि शंकर परम वैष्णव है जो अपनी निंदा करने वालों की अपने को नी कोई कहे कि अच्छा नहीं है तो उसकी परवाह नहीं करते, दुनिया कहे उसे क्या फर्क पड़ता है, भगवान को पसंद करना है। उसका कारण है कि आपका मुझ पर अति अधिक अनुग्रह है, अथवा आप अपने भक्तों पर अति अधिक अनुग्रह करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा भाव दिया है इसका। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मेरा मन और मेरी चेतना आपके चरण कमलों के ऊपर केंद्रित है भगवान, जो सब की सारी इच्छाओं को पूरी करने का वरदान देने वाले हैं, और मुक्त जीव भी जिसके चरणों का शरण लेते हैं और आपके चरण ही पूजनीय है। मेरा मन आपके चरणों में इतना विलीन है, अब मेरे को कोई कहता है अपमानजनक शब्द तो भी मैं उसकी परवाह नहीं करता। लोग कहते हैं मेरे काम अपवित्र हैं, कोई बात नहीं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, क्यों, मैं दया कर लेता हूं। जैसे आप दया करते हैं, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, मैं जीवों के ऊपर अनुग्रह करता हूं। शंकर जी से ये सीखने को चाहिए कि हमारे को भी कोई अच्छा बुरा कहता है उसको सुनना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर भगवान अनुग्रह करते हैं। अगर अज्ञानी मेरे को अपवित्र कहें, जब मैं आपके चरणों का ध्यान लगाता हूं, इसका कहने का भाव क्या है अगर आप देखें तो, इसका कहने का भाव यह है कि मैं दक्ष के यज्ञ के अंदर आपके चरणों का ध्यान कर रहा था, परंतु इन अज्ञानियों ने उस वक्त मुझे बड़े अपमानजनक शब्द कहे, अपना अनुभूति बता रहे। आशीषा का अर्थ है इच्छाएं, आपके चरण सबको वरदान देते हैं, जिनको इच्छा है वो भी आपके चरणों की शरण लेता है, और जिनको दक्ष जैसे पुरुषों को आपके आपका ज्ञान नहीं है वो कहते हैं कि मैं मर्यादा का उल्लंघन किया कि उठ के नहीं खड़ा हुआ उसके आने के ऊपर। तो इस श्लोक में भाव चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि दक्ष के अपमानजनक शब्दों का शंकर जी कहते हैं मुझे पता ही नहीं लगा, मैं तो आपके चरणों में ध्यान में था, इसने कह दिया तो मेरे को क्रोध क्यों आएगा, आना ही नहीं चाहिए, उस वक्त तो मैं चला गया। परंतु कहा जाए कि मुझे क्रोध आया कैलाश में जाने के बाद, जब मेरे भक्तों का अपमान हुआ। ये कैसे इनकी ये इनका जलप जो है, इनकी जो बेकास बकवास है, इसका मैं परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि ये आपकी बड़ी कृपा है, आपने अनुग्रह किया है। ये जो आपकी कृपा जिन भक्तों के ऊपर है, वो सब भक्तों को सबके ऊपर कृपा करते हैं और वो कैसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। श्री प्रभुपाद लेते हैं, भगवान शंकर पहले तो स्वयं अपने द्वारा क्रोधित होने के कारण पश्चाताप कर रहे हैं, और क्रोधित होकर क्या किया था, यज्ञ का विध्वंस किया था, इस बात के लिए सोच रहे हैं। दक्ष ने उनका अपमान किया था बहुत प्रकार से, प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए वो क्रोधित हो गए थे और सारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया था। अब देखिए, पहले यज्ञ में शंकर जी चले गए थे और दक्ष भी बायगाट गाय करके चला गया, वो यज्ञ हुआ ही नहीं। दूसरा यज्ञ दक्ष ने किया कनखल में, उसमें शंकर को बुलाया नहीं, ब्रह्मा जी आए नहीं। उस यज्ञ का विध्वंस शंकर जी ने नारद जी के कहने के ऊपर सती ने प्राण त्याग दिया और आपके गणों का बहुत बड़ा अपमान हुआ है, तो शंकर जी ने वीरभद्र को प्रकट किया, जिन्होंने शंकर के और जिन्होंने दक्ष के सारे यज्ञ का विध्वंस किया, तो ये मुझे क्रोध आया, ये बात वो कह रहे हैं। परंतु जब शंकर जी प्रसन्न हो गए, पुनः यज्ञ आरंभ हो गया, तो वो थोड़ा पश्चाताप कर रहे हैं। अब कहते हैं मेरा मन तो आपके चरणों में लगा हुआ है भगवान विष्णु, अब ऐसे लोग अगर मेरी निंदा भी करें तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। अब प्रभुपाद जी सिद्धांत बता रहे हैं, जब तक कोई भौतिक स्तर के ऊपर होता है, तीनों गुणों का जब तक प्रभाव होता है, तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होकर दुखी होता है, अपमान करने पे दुखी होता है, सम्मान मिलने कर पर सुखी होता है। परंतु जो कृष्ण भावना भावित है, जैसे ही वो कृष्ण भावना भावित होता है, तब फिर उनको स्तुति निंदा स्तुति दोनों समान लगती है, उनको फिर इसकी परवाह नहीं होती है। जो इस स्तर पे ऊपर पहुंच जाए उसको भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहता है मुझे प्रिय है। कौन मुझे भगवान को कौन भक्त प्रिय है? जो संसार में सुख आए या दुख आए, कोई मान दे या अपमान करे, दोनों में समान रहे। क्यों समान रहे? ये जानता है कि दोनों आने जाने वाले, हमेशा रहने वाले नहीं है, आए हैं चले जाएंगे। भगवान सदा रहने वाला है, मैंने भगवान को पकड़ा है तो आने जाने वाली चीजों के लिए विचलित क्यों होना? जो आई है वो चली जाएगी, सुख भी आया है चला जाएगा, दुख भी आया है चला जाएगा। सुख सपना है, दुख बुदबुदा है, दोनों मेहमान है, देने वाला भगवान है। भगवान के ऊपर दृष्टि जम गई तो फिर इन चीजों के आने जाने का कोई परवाह नहीं रहेगी। प्रभुपाद लिखते हैं इसलिए हम सबको कृष्ण भावना में पूर्ण रूप से अपने मन को कृष्ण के चरणों में केंद्रित करना चाहिए और उनकी प्रेममय सेवा में लगा रहना चाहिए, तो फिर प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से बचे रहेंगे। और ये बात भगवत गीता में भी कही गई है और तब प्रभुपाद ने 18वें अध्याय का इस श्लोक का भाव दिया है। ये श्लोक 18वें अध्याय का है और 14वें अध्याय का दोनों का लग सकता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं अविचारेण भक्ति योगेन सगुणान समतैतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं वो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ के ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति, तब वो दुनिया के दुख सुख के स्तर से ऊपर उठ जाते हैं। उनको न शोक होता है, न शोकति मतलब कोई जाने का दुख नहीं है, न कांक्षति कुछ पाने की इच्छा नहीं है। सम सर्वेशु भूतेषु सबके साथ समान भाव रखते हैं, तब वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत में भी यही कहा गया है क्या कहा गया है भागवत में? भागवत में भी यही कहा गया है सदा श्री कृष्ण का चिंतन करो, कभी उनके साथ जो अपना संबंध है उसको मत भूलो। ये असल में भक्ति का एकमात्र नेम है, स्मर्तव्य विष्णु सततम सर्वत सततम, सदा भगवान का स्मरण रहे, न विस्मर्त कदाचिन, कभी उनका भूलना नहीं हो। बाकी जितने नेम हैं, जितने रूल्स रेगुलेशन है, विधि निषेध है, वो सब इसके नौकर हैं। विधि निषेध किंकर, सदा श्री कृष्ण का स्मरण रहे, कभी उसको न भूलें। तो सदा याद करें ये नेम है, कभी न भूलें ये निषेध है। नहीं भूलें निषेध, याद रखें नेम। जो इस एक नेम का पालन करेगा उसके सारे नेम अपने आप पालन हो जाएंगे। तो भगवान के साथ हमारा दिव्य संबंध है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान ने हमको कभी नहीं छोड़ा, सदा हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में सुहृद बैठा हुआ है, तो हम उसको क्यों भूले? और प्रभुपाद कहते हैं ये जो भगवान ने हमारे को योजना दी है, जो ये मार्ग दिया है, इसको बहुत गंभीरता से और बहुत दृढ़ता से इसका पालन करना चाहिए। एवरीवन शुड फॉलो स्ट्रिक्टली। भगवान शंकर जी के इन शब्दों से ये अनुभूति होती है कि कृष्ण भावना भावित होने के उपरांत भौतिक प्रकृति के प्रभाव से भक्त मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इसलिए एकमात्र मुक्ति का मार्ग, एकमात्र बंधन से मुक्ति का मार्ग अथवा एक ही इलाज, एक ही चिकित्सा है निरंतर कृष्ण भावना में दृढ़ता पूर्वक लगा रहे, निरंतर कृष्ण भावना में दृढ़ता पूर्वक लगा रहे तो भगवान कृपा करेंगे और भौतिक जगत के प्रभाव का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो शंकर जी की स्तुति से हमें क्या सीखना चाहिए? भगवान का अनुग्रह पाने के लिए भौतिक जगत में तीनों गुणों के प्रभाव से बचने के लिए, मान अपमान से विचलित होने से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एकमात्र श्री कृष्ण का स्मरण ही साधन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भृगु जी की प्रार्थना को आज पढ़ लेते हैं, यहीं विराम करेंगे। अब भृगु जो मुख्य चीफ प्रीस्ट था, पुरोहित था, मुख्य पुरोहित है, वो कह रहा है यन माया घनया यन मायया गहनया अपहृतात्म बोधा ब्रह्माद्यस्तन भृतस्तस्मै स्वपन्तः नात्मन श्रुतिं तव विन्दते अधुनापि तत्त्वम् सो अयम् प्रसीदतो भवान् प्रणतात्म बंधो। प्रणतात्मा का मतलब जो भगवान का शरण लेते हैं, उनके आप हो बंधु, उसके आप हो रिश्तेदार, उसके आप हो सगे। हे शरणागत वत्सल भगवान, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, प्रसीदतो प्रसन्न हो जाइए। क्या क्या हो गया? यन माया, आपकी माया गहन, बहुत मुश्किल है इससे बचना, ये गहन है, बहुत गहरी है। अपहृत आत्मबोध, और इसके कारण आत्मबोध होता ही नहीं है। मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का नित्य दास हूं, ये तो बोध होता ही नहीं है। माया हमको अज्ञान में रखती है आत्मा के विषय में। बोला किसको रखती है? बोला ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा से लेके कीट पतंग तक सबको रखती है। भृगु जी ने तो ब्रह्मा की ओर इशारा किया और शंकर को भी इशारा करके दिखा दिया कि यहां से लेकर ब्रह्मा जी से लेकर सबको आपकी माया भ्रम में रखती है, आत्मबोध होने ही नहीं देती। तनुभृता का मतलब सभी शरीर के स्तर पे हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं। और जो ऐसे मानता है तमस सही, वो तो तमस है, अंधकार में, अज्ञानता में। और स्वप्ने का मतलब सोया हुआ है, संसार में जाग रहा है लेकिन भगवत चिंतन में सोया हुआ है, आत्म चिंतन में सोया हुआ है। नात्मन श्रुतिम तव विन्दते अथुनापि, भगवान आप अब यहां आए हैं, अधुनापि अभी अभी आप सामने खड़े हैं तो भी आपके स्वरूप को न आत्मन श्रुतम, अभी भी आपके स्वरूप को ये नहीं जानते हैं। अधुना अभी भी आप सब जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, अभी आप हमारे सामने आए हैं, लेकिन इससे पहले भी आप हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे थे ना। कोई नहीं इस बात का ध्यान रखता, अगर ये जानते होते तो ऐसा उपद्रव थोड़ी होता। मेरे द्वारा भी बहुत बड़े स्वयं भृगु ने बहुत बड़ा यहां जो उपद्रव किया है यज्ञ में, उसको भी मालूम है। तो कह रहा है ये सबका ये हाल है, अभी भी हम नहीं समझ सकते। विन्दते अधुनापि तत्व, इस तत्व को अभी भी नहीं समझ सकते कि आप सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हो। सो अयम, इसलिए मैं कहता हूं हमारे ऊपर आप अब करुणा करके प्रसन्न हो जाओ। सो भृगु जी कह रहे हैं हे प्रभु, आपकी गहन माया, गहरी माया, जिससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है, इसके कारण जिनका आत्मज्ञान लुप्त हो गया है, आत्मबोध, आत्मा का बोध गुम हो गया, लुप्त हो गया, नष्ट हो गया, छुप गया, ऐसे ब्रह्मा आदि शरीरधारी अज्ञान निंद्रा में सोए हुए हैं। ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा सामने खड़ा है, उसके सामने कह रहा है, ये भृगु तो ऐसा निर्डर है जो जाके वैकुंठ में भगवान विष्णु की छाती पे लात मार के आ गया था। वो ये कह रहा है इन दोनों के सामने, स्पष्ट कह रहा है, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उपयोगी वे आज तक, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उपयोगी वे आज तक भी आपके तत्व को नहीं जान सकते। आपके तत्व को जानेंगे तो फिर आत्मा को जानेंगे। सूर्य हो गया तो क्या, तो अंधकार चला जाएगा, अपना भी पता लगेगा, संसार का भी पता लगेगा, लेकिन ये नहीं जानते। ऐसे आप शरणागत भक्तों की आत्मा और बंधु हैं। ये शरणागत बंधु, प्रणत्त बंधु, अतएव आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। तो भृगु जी ने क्या कहा, इसका भाव लिखते हैं। भृगु वैष्णु ने, महर्षि ने कहा कि हे भगवान, जीव स्वभाव से ही तत्व ज्ञान से रहित है। जीव स्वभाव से ही तत्व ज्ञान से रहित है, ये चेतना चरितमृत में कैसे इसके लिए लिखा है, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान। माया से मोहित जीव कभी भी अपने आप कृष्ण को जान नहीं सकता है। अतएव अज्ञान वशत मैंने, आप अपनी बात कर रहे हैं, अज्ञान के कारण मैंने जो दुष्चेष्टाएं की, दुष्चेष्टाएं की का मतलब इस यज्ञ के अंदर मैंने यदक्ष का पक्षपात किया, शंकर जी के अनुचरों के ऊपर उपद्रव किया, यज्ञ में आहुति डाले, ऋभु देवता बनाए, इस शंकर जी के गणों को खदेड़ के भगाया, मैंने बहुत सारे क्या किया है, दुष्चेष्टाएं की, उसको आप क्षमा कर दें। वे कहते हैं आत्मा में आप विद्यमान हैं, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, तथा आप सबों में अनुगत हैं, इस बात को वे नहीं जानते। आप अपने शरणागत भक्तों की आत्मा और बंधु हैं। तो ये भाव भृगु जी अपनी क्षमा भी मांग रहा है और ऐसे भी कह रहा है कि सबका यही हाल है, मैं अकेला नहीं हूं। तो श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सारे जीव ब्रह्मा से, सारे जीव ब्रह्मा पर्यंत आपकी इस गहन माया से मोहित है और वो आत्म तत्व के विषय में, अपने स्वरूप में के विषय में पूर्ण रूप से अज्ञानी है। हर एक व्यक्ति शरीर के स्तर के ऊपर देह आत्म बुद्धि में ग्रस्त है और अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। वो वास्तव में आपको जान ही नहीं सकते। क्या नहीं जान सकते, कि आप सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। आपकी आपकी स्थिति जो है ये नहीं जान सकते, परंतु आप शरणागतों के मित्र हैं, बंधु हैं, इसलिए हमारे ऊपर कृपा कीजिए, क्षमा कर दीजिए हमारे अपराध। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ब्रह्मा और अन्य का नाम लेके, वो तो भृगु जो है ब्रह्मा और शंकर जी की ओर उंगली उठा के कह रहा है, यहां से लेकर इन सबके ऊपर तमसी स्वपनतः, ये सब अज्ञान के अंधकार में सोए हुए हैं, अभी भी ये आपके विषय में सत्य को नहीं जानते हैं। आत्म अनुश्रितम का मतलब है आप स्वयं प्रकट हैं, सबके हृदय में विराजमान है, ये तत्व अभी भी नहीं जानते। अज्ञान के कारण ये मैं करते हैं, मैं मेरा, मैं मेरा, यही करते। आप वो ऐसे नहीं कहते, हमारे ऊपर कृपा करो, दया करो, मैं भी अपराधी हूं। आप ब्रह्मा और शंकर, आप ब्रह्मा के मित्र नहीं भी हो, या मुझ जैसे उपद्रव करने वाले के मित्र नहीं हो, तो ये मैं जानता हूं, कोई बात नहीं। परंतु जो आपके शरणागत है, परपन है, उनके तो आप बंधु हो ही न। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं फिर भी कि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, भृगु मुनि तो जो कुछ यज्ञ के अंदर उपद्रव हुआ था उन सब को जानते थे। स्कैंडलियस बिहेवियर, सबने जो 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 त्रुटियां, गलतियां, उपद्रव, अपमानजनक शब्द कहे थे, वो सब देखे थे, सुने थे। और उसमें वो कहते हैं ब्रह्मा जी और शंकर जी से देके दक्ष के यज्ञ में जितने आए थे उन सब के द्वारा कुछ न कुछ गलतियां हुई हैं। ब्रह्मा का नाम मुख्य रूप से जीवों का पितामह होने के कारण लिया है और उससे सबको समझना चाहिए कि सबका हाल ऐसा ही है। उसमें ब्रह्मा भी है और शंकर भी आते हैं, इनके ऊपर भी मैं और मेरा का प्रभाव पड़ता है और ये मैं और मेरे का प्रभाव पड़ता है माया के कारण। माँ बस क्लास खत्म हो रही है, खत्म कर रहे हैं, टाइम हो गया दूसरी क्लास का। और भगवान विष्णु के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। भृगु ऋषि कह रहे हैं जब तक शरीर के स्तर पे कोई रहता है तब तक ये बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल है, असंभव है कि कोई परमात्मा को सबके हृदय में देख सके। अगर कोई परमात्मा को सबके हृदय में देखेगा तो किसी के साथ झगड़ा क्यों करेगा, द्रोह क्यों करेगा, बुराई क्यों करेगा, लालच क्यों रखेगा, धोखा क्यों देगा? परमात्मा नहीं देखता है सबके हृदय में तब ऐसा करता है ना। परमात्मा सबके हृदय में देखेगा तो क्यों हम परमात्मा के साथ जो झगड़ा करें? तो सबके हृदय में परमात्मा है तो सबके साथ व्यवहार अच्छा करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं ब्रह्मा जी से लेके भृगु, अपना नाम भी इसमें गिन रहा है, हम अज्ञानी हैं, बद्ध हैं, संसार में आए हुए हैं, हमारे लिए एक ही रास्ता है ऐसे संकट से बचने का, वो है केवल भगवान विष्णु का शरण लेना, कृष्ण भावना भावित होना, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमको क्षमा कर दे। अपन अपने बल से छूट नहीं सकते हैं, सबको भगवान की अहितुकी कृपा का ही आश्रय लेना चाहिए। भगवान कृपा करेंगे तभी हम बच पाएंगे, ये विश्वास होना चाहिए। हमारे बल से नहीं बच सकते, हमारे बल से बचते तो कब के बच गए होते हैं। नहीं, हमारे बल से नहीं बचेंगे, भगवान की कृपा से ही बचेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं यही है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की सिद्धि। कृष्ण भावना व्यक्त भक्त, कृष्ण भावना भावित भक्त जो है उसकी परफेक्शन है, वो समझता है कृष्ण की कृपा से ही मैं संकट से मुक्त हो सकता हूं, मेरे प्रयास से नहीं। भगवान सबके मित्र है, सुहृद सर्वभूतानाम, सबका हितैषी है, परंतु भक्तों से बहुत अधिक स्नेह करते हैं। जो शरण लेते हैं ऐसे आत्मा को तो अपना बंधु मानते हैं। इसलिए बहुत सरल साधन है जीवों के लिए कि भगवान का शरण ले ले, जो सब प्रकार से सुरक्षा देंगे, रक्षा करेंगे और माया के सारे बंधनों से मुक्त कर देंगे। तो भगवान का शरण प्रेम का शुभ आरंभ है, शरणागति से ही प्रेम का शुभ आरंभ होता है। तो भगवान का शरण लेने के लिए गुरु का शरण लेना है और गुरु का शरण लेने के लिए आज्ञा पालक, उसके लिए आज्ञा पालक होना और सबमिसिवनेस जो है, सबमिसिवनेस के लिए हिंदी में शब्द क्या होना चाहिए? सबमिसिवनेस के लिए शब्द क्या होना चाहिए हिंदी में? सबमिसिवनेस,
नम्रता के साथ,
समर्पण,
समर्पण, नम्रता, निम्रता और भी कोई शब्द होना चाहिए, शरणागत, अपने को छोटा समझना, दूसरे को बड़ा समझना, ये सबमिस्टर का मतलब है कि हमसे कोई महान है उसका शरण लेना है, अपने आप को छोटा समझना है। तो सबमिसिवनेस बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति के शुभ आरंभ के लिए। हरे कृष्णा, यह कथा को विराम देते हैं। कल 31वें श्लोक से अब ब्रह्मा जी प्रार्थना करेंगे, इसका श्रवण कल करेंगे। अब कथा को यह विराम देते हैं कि